मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग हेट स्पीच पर कुछ बातें करेंगे। देखते हैं कि समय इसकी कितनी इजाजत देता है, लेकिन इससे पहले जो दो महत्वपूर्ण खबरें हैं मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक खबर कल की न्यूज की है और खासकर ये तलाक को लेकर है। अखबारों में आज आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, न्यूज में भी आपने जरूर सुना होगा और मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए क्योंकि हमारे सामाजिक रिश्तों से जुड़ी हुई खबर है। इसे आप महत्वपूर्ण भी मान सकते हैं और खासकर अपने जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर के लिए यानी मेंस के, उसके लिए तो आप महत्वपूर्ण मान ही सकते हैं। खबर कुल मिलाकर के ये है फ्रेंड्स कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने एक डिसीजन में कहा है, फैसला ही दिया है, कहा है नहीं बल्कि निर्णय दिया है कि जब पति और पत्नी के आपसी रिश्ते इतने कटु हो जाएं कि उन्हें ठीक करना संभव ही न रह जाए, असाध्य कह लीजिए, यानी कि जो रिश्ते हैं वे यदि असाध्य स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि जो समय दिया जाता है 6 महीने का वो अनिवार्य हो। यह मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। सामान्य तौर पर यह होता है कि जब पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी देते हैं कोर्ट में, इसके लिए फैमिली कोर्ट हमारे बकायदे बने हुए हैं, तो फैमिली कोर्ट ये कहता है कि भाई आप लोग सेपरेशन पीरियड देता है कि 6 महीने अलग रहिए। तो जो फैमिली कोर्ट है वो दोनों को अलग अलग रहने के लिए एक वक्त निर्धारित कर देता है। ये वक्त जो है 6 महीने से लेकर के और 1.5 साल तक का होता है। चलिए हम 6 महीने मान लेते हैं कि आप दोनों 6 महीने अलग रहिए। कोर्ट को ऐसा लगता है कि जब ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो शांतिपूर्वक विचार करेंगे अपनी स्थितियों पर और हो सकता है कि फिर इन्हें ऐसा लगे कि नहीं, अलग अलग रहना संभव नहीं हो रहा है, अपनी अपनी गलतियों पर विचार करें, एक दूसरे की गलतियों पर विचार करें और फिर ये निर्णय लें कि नहीं, हम तलाक नहीं देना चाहते। तो इसीलिए एक सेपरेशन पीरियड रखा गया है। इसी को लेकर के बात चल रही थी, कोर्ट में पहले से मामला गया था तो 2016 में फिर खासकर इस सेपरेशन पीरियड वाले मामले को ही लेकर के इसे संविधान पीठ को सौंप दिया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट के केवल 2 जज इसकी सुनवाई कर रहे थे, बाद में संविधान पीठ को सौंप दिया गया। ये सन 2016 की बात है, उसी पर अब ये फाइनल डिसीजन आया है। मैं फाइनल डिसीजन को फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि पति पत्नी के रिश्ते पूरी तरह से टूट जाएं, इसे आप कह लीजिए कि असाध्य स्थिति में पहुंच जाएं, तो तलाक के लिए 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वह जरूरी नहीं है। यह निर्णय है। अगर हम प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इस पर जब तैयारी करेंगे तो हमें 1-2 बातों का और ध्यान रखना होगा। यह तो घटना हो गई, खबर हो गई। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो डिसीजन दिया है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिया है। अनुच्छेद 142 जो हमारे संविधान का है वो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह अपनी ओर से किसी भी मामले को टेकअप कर सकता है, उस पर निर्णय ले सकता है अपनी ओर से। देखिए, जनरली होता क्या है कि हम कोर्ट के पास खुद जाते हैं, लेकिन अगर कोर्ट को कुछ लगता है कि नहीं नहीं इसमें सार्वजनिक नीति सार्वजनिक हित का मामला है तो कोर्ट खुद भी मामले को अपने हाथ में ले सकता है। तो ये जो डिसीजन दिया गया है कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 142 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अनुच्छेद 142 आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने यह बहुत साफ तौर पर कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा नहीं है कि विवाह भंग होने की स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको भी तलाक अब देना है और जल्दी से मामले को निपटाना है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब यह अनुच्छेद 32 है वो क्या है, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। जो अनुच्छेद 32 है ये फंडामेंटल राइट्स के तहत है कि किसी भी नागरिक को यदि यह लगता है कि उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, आप जानते हैं मौलिक अधिकारों का उसका हनन हो रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, ऐसे मामलों को आप मत समझ लीजिएगा कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। नहीं, जो प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया का पालन कीजिए। तो 2 अनुच्छेद की बात हो गई। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत क्लियर कहा है कि ये जो निर्णय है हमारा, ये व्यवस्था केवल हिंदू मैरिज एक्ट के लिए है। आपको मालूम है कि हमारे यहां बहुत से पर्सनल मैरिज एक्ट हैं, तो जो दूसरे मैरिज एक्ट हैं उन पर यह लागू नहीं होगा, यह सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट पर लागू होगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और इसको लेकर के जो हिंदुस्तान है उसने एडिटोरियल कमेंट्स लिखा है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे एडिटोरियल कमेंट्स को एक बार जरूर पढ़ लें। प्रेस क्लिपिंग्स के तहत मैं वो एडिटोरियल कमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो दूसरी एक खबर है अखबारों में, चैनल्स पर काफी दिनों से आ रहा है, जो दूसरे तरह के चैनल्स हैं उन पर काफी दिनों से ये खबर आ रही है, वो खासकर हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, उनको लेकर के है। खबर आपको मालूम है कि किस तरह से वो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उन पर इन महिला पहलवानों ने, आप कह लीजिए, कि आरोप लगाया है यौन शोषण का। इससे पहले भी आरोप लगाया गया था और उन्होंने शिकायत की है कि हमने कोशिश की कि हमारी एफआईआर दर्ज कर ली जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई, अब तक दर्ज नहीं की गई। इससे पहले भी इन महिला खिलाड़ियों ने मांग की थी, उस समय आश्वासन दिया गया था कि इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी सामने आए अभी तक आई बातें नहीं है, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी थीं वो इससे संतुष्ट नहीं हुए, चीजों में प्रगति नहीं हो रही थी, तो फिर से वो जंतर मंतर पर अब बैठे हैं। और आप देखिए कि जंतर मंतर पर बैठने के बाद, लगातार मांग करने के बाद भी न तो एफआईआर दर्ज हुई और न सरकार ने इस पर कोई कदम उठाया, तो फिर हुआ क्या? दोस्तों, हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट को फिर यह कहना पड़ा प्रशासन को कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और बकायदे इस पर एक्शन लीजिए। सोच करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ी। ये घटना हो गई। अब इस घटना से संबंधित जो कुछ प्रश्न उठते हैं या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो एक यू कह लीजिए प्रश्न तैयार होते हैं, हम आइए उन पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पहली बात, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट, सोच करके देखिए, यह प्रशासन को करना चाहिए था। देखिए, एफआईआर होती क्या है? केवल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हम थाने में जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखाने, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हम केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो वहां से शुरू होती है। एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने आरोप लगा दिया तो वो आरोपी हो ही गया और उसे गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, वो तो शुरुआती बिंदु है कि वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। आप कल्पना करके देखें कि इन महिला खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, पहली बात। और ये जो खिलाड़ी हैं, ये स्टेट लेवल के खिलाड़ी नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर है हमारी, ये हमारे गौरव है। दूसरी बात, महिला है। तीसरी बात, यौन उत्पीड़न का मामला है जो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, और यहां तक है कि जो अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसे या कह लीजिए सस्पेंड कर दिया जाता है, या सरकार उसके खिलाफ जो भी कदम उठा रही हो उसे करना होता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद एफआईआर नहीं लिखी गई, प्रशासन पर प्रश्न उठता है। दूसरी बात, अक्सर ज्यूडिशियल एक्टिविज्म की बात की जाती है, न्यायिक सक्रियता की बात की जाती है, और यह कहा जाता है कि अब जो न्यायालय है ना, ये कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो रहा है और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा है। इसको आप, अभी जो घटना हुई है, इस घटना को आप, ये जो आरोप लगाया जाता है न्यायालय पर, उस कसौटी पर कसकर देखिए। जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, खासकर यहां महिला खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, केवल पुलिस की ही नहीं बल्कि और प्रशासन के जो दूसरे अंग है वो भी तो देख रहे हैं, लेकिन किसी ने ये दबाव नहीं डाला कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो प्रशासन क्या कर रहा है? और अगर प्रशासन अपनी इस तरह की लापरवाही या कह लीजिए या उपेक्षा का परिचय देता है, तो फिर देश के नागरिक के पास अपनी सुरक्षा के लिए या न्याय के लिए एकमात्र जो स्थान बचता है वो क्या है? न्यायालय, और अगर न्यायालय के पास जाने पर न्यायालय इस तरह का कदम उठाती है तो यह न्यायिक सक्रियता है या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया उसका कदम है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तीसरा एक और बिंदु है कि क्या बात है कि जो फेडरेशन के अध्यक्ष उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही है। उसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि वो अभी सांसद हैं, इससे पहले भी वो कई बार सांसद रह चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि वो एक VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो क्या वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती, नहीं कराई जा सकती? यह भी एक सोचने की बात है। तो क्या ये जो VIPs हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वो उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं, या क्या वो लॉ से ऊपर हैं, क्या उनके लिए अलग तरह के कानून की व्यवस्था है? यह भी प्रश्न इससे खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये जो 3-4 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, ये चूंकि सीधे सीधे आपके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन से संबंधित हैं, इसीलिए इन पर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। और इस इवेंट को एक तरह से प्रशासन, न्यायालय और जिनकी भी बातें मैंने की हैं उनकी एक अपडेटेड खबर के रूप में आप लें। यदि कोई भी प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है तो आपको चाहिए कि आप उसमें लेटेस्ट इवेंट्स, लेटेस्ट एग्जाम्पल्स को शामिल करें। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के लिए अब वक्त नहीं बचा है, इस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। तो अब बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में दो दोस्तों के नाम हैं अंजलि पांडे और गुंजा कुमारी समस्तीपुर बिहार से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।